Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, जिंदगी की राह में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग हमारे साथ चल तो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने आप के खुद की जो सेल्फ वर्थ है, खुद का जो एग्जिस्टेंस है, उसे भूल जाते हैं। खुद की खुशी, खुद के अंदर में किस तरह से अपने आप को सदा सशक्त बनाकर कोई भी समस्याओं में अपने आप को ना भूले। क्योंकि अगर आप खुद के साथ में रिश्ता क्रिएट करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके सभी और जो रिश्ते हैं वो ऑटोमेटिकली सही तरीके से सही पटरी पर चलने लगेंगे। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर अवधीश शर्मा जी। वेलकम टू आवर शो भाई जी।
थैंक यू वेरी मच, प्लेजर।
डॉक्टर साहब, हमने अभी एक सीरीज चलाई रिश्तों की, जिसमें हमने छोटे छोटे पहलुओं पर ध्यान देकर किस तरह से अपने रिश्तों को, चाहे वो ऑफिसेज में हो, चाहे वो बच्चों के साथ हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, चाहे कोई भी तरीके के रिश्ते हो, हमने ये जानने की कोशिश की कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ उसे सुधारा जा सकता है। अब हम ऐसे पायदान पे पहुँचे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रिश्ता, जो कि कहीं ना कहीं हम भूल सा जाते हैं, जो कि खुद के साथ है, उसके बारे में आज हम चर्चा करना चाहते हैं। इसमें आपकी क्या कहना है?
देखिए, पहली बात तो कि साइंस थोड़े से छुपे रूप से इस रिश्ते को मानता है, क्योंकि इस रिश्ते को जानने के लिए और फिर उसे पहचानने के लिए हमें बाहरी नहीं पर अंदर के वर्ल्ड के अंदर जाना पड़ता है। बाहर की चीज़ों को महसूस करने के लिए तो हमारी इंद्रियां हैं, लेकिन उन पांच इंद्रियों के पार जाकर हम अपने अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उन्हें अगर ध्यान देकर बैठकर सोचकर महसूस करके और फिर डेवलप करते हैं सही नॉलेज के साथ, तभी हम उस रिश्ते को जान सकते हैं। बचपन में अगर देखें कि ये डेवलप कैसे होता है, तो जो बच्चा होता है उसको जो माँ बाप नाम देते हैं वो नाम आमतौर पे तो शरीर का है, लेकिन धीरे धीरे बच्चा ये भी समझने लगता है कि उसके अंदर कुछ विचार चल रहे हैं जो कि बाहरी ज़िंदगी के साथ कुछ लेना देना नहीं है। और कई बार कुछ बच्चों में ये विचार ज़्यादा प्रबल भी होते हैं, और अगर घर का माहौल भी ऐसा हो जहाँ पे कि इस तरह के प्रश्नों को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, तो बच्चा सोचने लगता है इस बारे में और उसकी ग्रोथ जो है एज अ पर्सन वो एक दिशा पकड़ती है। अगर मान लीजिए घर का माहौल ऐसा है कि जहाँ कहते हैं अच्छा क्यों परेशान होती हो इन प्रश्नों के बारे में, खाओ पियो खेलो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उस चीज़ को दबाना शुरू कर देता है। ये प्रश्न बार बार और ख़ासतौर पे उस समय जब व्यक्ति किसी तरह के तनाव से गुजर रहा होता या कुछ लाइफ की ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिन्हें वो डील नहीं कर पाता, या अगर वो अपने व्यक्तित्व में किसी तरह की कमियों को महसूस करता, तो ये प्रश्न फिर उठ के खड़े हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज समाज में, एंड इट इज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, भारत में तो फिर भी कुछ ऐसे फोरम्स हैं जहाँ पे कि इस तरह की बातें की डिस्कशन की जाती है, लेकिन इस तरह की डिस्कशन करने के जरिए बहुत कम हो गए, और इसीलिए व्यक्ति ढूंढता रहता, कई बार गलत लोगों से पूछता है, अलग अलग तरह के आंसर्स मिलते हैं और उस कारण से उसे क्लैरिटी नहीं होती कि वो है कौन। एक्चुअली इस समय साइंस भी इस बात को महसूस कर रही है और ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अगर हम हेल्थ में देखें तो हेल्थ में शरीर है और उसका इक्विवेलेंट अगर हम देखें तो ब्रेन है, और साथ साथ जो प्रोसेसेस उनके अंदर चलते हैं सुपर फास्ट स्पीड पर, अनइमेजिनेबल काइंड ऑफ प्रोसेसेस जिसका की इक्विवेलेंट मन है, और उसी के साथ एक छुपी हुई चीज़ जो कि उन सबको चलाती है, उससे कॉन्शियसनेस, स्पिरिट, सोल, आत्मा अलग अलग प्रकार से बुलाया जाता है। वो एक एनर्जी है जो कि हर प्रकार से हमारे प्रोसेसेस को सुचारू रूप से चलाती है। और उसमें सबसे जो बड़ी पावर है वो है पावर टू एनालाइज, पावर टू नो इट्सेल्फ। मैं क्या हूँ, क्या सोचता हूँ, भावनात्मक कैसा हूँ, और किस प्रकार से मैं अपने जीवन को मूल्यों के साथ चलाकर एक गोल की तरफ बढ़ रहा हूँ, ये प्रोसेस अगर समझने में आना शुरू हो जाए तो बाहरी रूप से जो भी चल रहा या जो भी तनाव चल रहे हैं उन तनावों के बीच मैं अपने आप को स्टेबल महसूस कर सकता हूँ। क्योंकि मेरा अपने साथ एक रिश्ता खूबसूरत है, मैं अपने अंदर क्योंकि सक्षम हूँ, अगर मुझे अपने अंदर ही आनंद या प्रेम या पीस या शक्ति या बीइंग लाइट ये सब अनुभूतियाँ होंगी तो मुझे बाहरी रूप से इन चीज़ों को ढूंढना कम हो जाएगा। लेकिन इस रिश्ते को सिखाने के लिए आपको आमतौर पे किसी गाइड की जरूरत होती है।
अच्छा।
जो आपको आपके अंदर आ रहे विचारों को और आपके अंदर जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उनको इंटरप्रेट करके आपकी मदद कर सके, और फिर बाद में जीवन में किस प्रकार से उन चीजों को लगाना है, आत्मसात करना है, उसमें आपकी मदद कर सके। ऐसे गाइड्स मिलने की जरूरत भी होती है लेकिन कमी भी बहुत है। और ये प्रोसेस एक्चुअली अगर बचपन से शुरू हो जाए, क्योंकि कई बार कहा जाता है कि ये जो आत्म आध्यात्म है ये स्पिरिचुअलिटी तो जीवन के एंड ईयर्स के लिए है, लेकिन एंड ईयर्स में आप कोई नई चीज़ सीख नहीं पाते। जो आपने सीखा है उसको एक्सपीरियंस के साथ, अनुभूति के साथ आप अलग रूप से इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन अगर उसका बीज ही नहीं डला है तो वो नए रूप से उस समय में नहीं डल पाता।
अच्छा।
और अगर हम अपने बच्चों को किस प्रकार से सक्षम बनना है, किस प्रकार से बाहर की चीज़ों के साथ अपने अंदर समावेश करना है, किस प्रकार से अगर घटनाएं हों तो उनके साथ बह नहीं जाना है, किस तरह से रिश्तों की जो सही आंकलन है उसको करना है, किस प्रकार से अपने आप को बदलना है, ये जो सॉफ्ट स्किल जिनको कही जाती है एक्चुअली लाइफ स्किल्स हैं, ये जो जीवन में जीवन को चलाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर उनको समझाना शुरू किया जाए या बेस्ट होगा कि उनको अपने जीवन से प्रेरणा दी जाए,
दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर बच्चों की बात करें हम, आपके हिसाब से कौन सा राइट एज है जिसमें हम इस तरह की चीज़ों को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं? क्योंकि पता नहीं चलता, क्योंकि आजकल के बच्चों की अगर हम बात करें उनके अंदर में टेक्नोलॉजी को लेकर की इतनी ज़्यादा सजगता है, वो अपने आप को गोल ओरिएंटेड बहुत पहले से ही समझने लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो बीज डाल दिया जाता है पेरेंट्स और टीचर्स के थ्रू। ऐसे सिचुएशन में एक छोटे से बच्चे को भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, शायद उनके स्कूल बैग्स भी इतने ज़्यादा हैवी होते हैं जो शायद उनके वजन से भी ज़्यादा होते हैं, तो बहुत छोटी उम्र से ही प्रेशर ज्यादा होने लगते हैं। तो आपके हिसाब से कौन सा राइट एज है टू इंट्रोड्यूस सच काइंड ऑफ एन थॉट?
जैसे बच्चा पैदा होता
है। ओ वाओ।
क्योंकि देखिए ये अनुभूतियां हैं, अगर माँ बच्चे को अपने साथ लगाती है और उसे प्यार महसूस होता है तो वो भी एक ऐसा गुण है जो पूरी जिंदगी में उसके मन में आएगा। वो बच्चे जिनको कि कभी भी किसी का प्यार नहीं मिला उनकी ग्रोथ बिल्कुल अलग होती है और उनका अपने साथ रिश्ता भी बहुत अलग होता है। दे लिव इन अ सेंस ऑफ डेप्रिवेशन। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ये चीज़ें वो अपने आसपास महसूस करता, माहौल कैसा है, लोग आपस में झगड़ रहे हैं या नहीं, लोग कुछ समय के लिए शांति में बैठ पाते हैं कि नहीं। जिन बच्चों ने इस चीज़ को महसूस किया है आगे जाके उसी अनुभूति को वो ढूंढते रहते हैं। लेकिन अगर आपने महसूस ही नहीं किया हुआ है तो आप पीस पे ब्लैक बोर्ड पे चाहे लिख दें लेकिन वो महसूस नहीं होगा। और यहाँ पे उनके बैग को भारी करने की बात नहीं, खेल खेल में किस प्रकार से वो इन मूल्यों को अपने जीवन में अपना सकते हैं ताकि जब बाहर का भार बढ़े तो वो अपने आप को कैसे लाइट महसूस करें।
Very nice.
तो इसमें एक्चुअली कोई भी ऐसी बात तो है ही नहीं कि बच्चे उसे अपना ना पाए। एक्चुअली बच्चों को अपनाना इसलिए भी आसान हो जाता है क्योंकि उनके मन में और कई तरह के कॉन्सेप्ट नहीं घुसे हुए। प्लस टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी इस चीज में मदद कर सकती है।
अच्छा,
इसके द्वारा अगर कंटेंट आपका अलग है तो टेक्नोलॉजी उसको काफी हद तक आगे ले जा सकती है। टेक्नोलॉजी के द्वारा हम उस रूप में इसको पेश कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एज कि वो उसे या तो खेल समझे या वो किस तरह से दो बच्चे आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं तो उनकी उम्र के लिए क्या हो सकता है, और फिर जब थोड़े बड़े हों तो उस समय के जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे ले सकते हैं। तो ये चीज़ समय के साथ साथ बदल सकती है। टेक्नोलॉजी एक माध्यम बन सकता है उस चीज़ को आगे ले जाने का, लेकिन जो कोर इश्यूज़ हैं, वैल्यूज़ हैं, जो गुण हैं, जो महत्व हम इन चीज़ों को देते हैं, जो वो मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनते हैं, जो वो मेरे रिश्तों में आते हैं, वो चीज़ तो एटर्नल है। और वो समय के साथ साथ जितना हम बढ़ाते जाते हैं और वहाँ पे कुछ प्रैक्टिसेस का होना, खासतौर पे उस चीज़ की सही नॉलेज का होना, मैं कौन हूँ, मेरी सोच किस प्रकार से मुझे प्रभावित करती है, मेरे पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट्स जो हैं या मेरे इमोशन जो हैं वो मेरे शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं, मैं किस प्रकार से दूसरों को भी सकारात्मक रूप से अपने साथ लेके चल सकता हूँ, मैं किस प्रकार से अपने रिश्तों को मधुर बना सकता हूँ, ये सारी चीज़ एक प्रैक्टिकल चीज़ है। और उसको अगर हम अपना के और फिर बीच बीच में कुछ प्रैक्टिसेस जैसे कि मेडिटेशन की प्रैक्टिस है। मेडिटेशन के बारे में इंसिडेंटली पिछले 20-25 वर्षों से साइंटिफिक शोध भी बहुत हो रहे हैं।
अच्छा,
और उसमें कुछ अब तो जर्नल्स हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी, कॉन्शियसनेस, मेडिटेशन इसके ऊपर कम्प्लीटली डेडिकेटेड है। और ये शोध को अगर हम आंकलन करते हैं तो अमेरिका और भारत दो ऐसे विश्व के देश हैं जहाँ पे कि सबसे अधिक शोध इसमें चल रही है। और जब हम एक मेडिटेशन प्रोसेस में बैठते हैं, वहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट भी करना चाहूँगा, एक है सिर्फ मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब ये हो सकता है कि आप थोड़ी देर के लिए बैठे, ध्यान में बैठे और उससे आपको कुछ अनुभूतियाँ हुई, प्रेम की, आनंद की, शांति की, बीइंग लाइट की, या कुछ आपके सकारात्मक विचार चले जिसका कि डायरेक्टली आपके शरीर पर पॉजिटिव असर होता। ये चीज़ अब कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा भी देखी गई है कि इन सब से हमारी जो रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स जिसको हम बोलते हैं वो बढ़ती है। तो उसकी वजह से जो शारीरिक बीमारियां हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर की हो या डायबिटीज़ की हो या हार्ट डिजीज़ हो या माइग्रेन्स हो या सिर्फ इन्फेक्शन से लड़ने की जो हमारी ताकत है उसकी हो या हमारी नींद का सुचारू होना, ये सब बेहतर होता जाता है। जो हार्मोनल प्रोफाइल है वो बेहतर होती जाती है, जो ईईजी पैटर्न्स हैं वो बेहतर होते जाते हैं, ये शोध द्वारा दिखाया गया। लेकिन मेडिटेशन के बियॉन्ड एक स्टेज है जिसको हम मेडिटेटिव लाइफस्टाइल कह सकते हैं। कि हर समय हम उस स्थिति में रहें कि हम बहुत ज़्यादा फंस ना जाएं चीज़ों के साथ। कि हम उनके साथ डील करते करते अपने खुद का जो रिश्ता है उसको ना भूल जाएं।
जी।
और वहाँ पर अगर हम एक हायर पावर की बात भी करते हैं, वो हायर सेल्फ कुछ लोग उसका नाम देते हैं, लेकिन उसे अगर हम परमात्मा, गॉड, हायर बीइंग जो भी कहना चाहें, जिसके साथ मेरा कनेक्शन बन पाए, जिसके साथ मैं पावर्स ले पाऊँ, जिसको कि मैं महसूस कर पाऊँ हर समय अपने साथ, तो फिर आप अकेले नहीं होंगे, आपका कोई ना कोई साथी होगा।
जी।
और वो एक ऐसा साथी होगा जो आपको गाइड कर सकता है।
बिल्कुल।
बहुत से लोग हैं जो कि जब उस प्रकार का जीवन जीते हैं, और मैं ब्रह्मा कुमारीज के साथ 2 दशकों से ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ और अलग अलग क्षेत्र में हर तरह के लोगों को मिलता भी हूँ और ब्रह्म कुमारीज का जो लाइफस्टाइल है उसको भी देखता हूँ, जिसमें बात सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं, लेकिन हम कैसे खा रहे हैं और हमको क्या खा रहा है यहाँ पर। मैं किस रूप में सोता हूँ, मैं किस रूप में जागता हूँ, उठने के बाद अपने दिनचर्या को कैसे बिताता हूँ, किस प्रकार से सेवा में दूसरे लोगों को किस भाव से लेता हूँ और अपने में बैटरी चार्ज करने के लिए किस रूप में रखता हूँ, अगर उसको एक पूरा लाइफस्टाइल बना लें तो आपके पास हमेशा कोई ना कोई होगा, आपका हाईएस्ट सेल्फ, और वो होगा जो आपको वो पावर हमेशा दे सकता है
जी,
परमात्मा नाम ले लें या गॉड ले लें।
डॉक्टर साहब, आज का जो ये एपिसोड रहा है ये बहुत ही ज़्यादा अद्भुत रहा है, काफ़ी सारी नई बातें हमने जानी, एक नई नॉलेज को हमने अपनाया कि कैसे हम खुद के साथ में ही रिश्ता क्रिएट करें, क्योंकि अगर खुद के साथ में हम सेटिस्फैक्शन में हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे सारे रिश्ते वो सही प्लेस पर गिरने लगेंगे। डॉक्टर साहब, कुछ सवाल है हमारे ऑडियंस के जो हम आपसे पूछना चाहते हैं?
वेलकम।
मैं माधुरी गुप्ता यूपी से आई हूँ, HL अमेठी से। मेरे मन में इच्छाएं आकांक्षाएं बहुत है, मैं इससे मुक्ति पाना चाहती हूँ। मैं अपने जीवन में संतुष्ट नहीं हूँ, इसके लिए मैं क्या करूँ?
मैं विजय गुप्ता HL कोरवा अमेठी से हूँ। मेरे 2 बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हमें घर से कोई दिक्कत नहीं है पैसे रुपए किसी भी मामले में। मेरी फैमिली भी बहुत अच्छी है, बहुत पैसे वाली है, रिच फैमिली है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं हूँ। हमें ऐसा लगता है कि किसी चीज़ की खोज है, मेरे जीवन में सब कुछ है फिर भी कुछ खालीपन महसूस होता है, इसका समाधान बताया जाए।
जी, इनका सवाल कुछ इस प्रकार है कि इनके मन के अंदर में बहुत सारी बातें एक साथ चल रही होती हैं, क्योंकि इनकी इच्छाएं इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, तो क्या होता है कि वो अपनी इच्छाओं से मुक्ति भी पाना चाहते हैं पर पा नहीं पा रहे हैं, हर वक्त कोई ना कोई नई चीज़ की चाह में कहीं ना कहीं उनकी संतुष्टता जो होती है वो खो सी गई है
जी।
ऐसे में संतुष्टता को किस तरह से अपनी ज़िंदगी में लाया जा सके, इनका ये सवाल है। और दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार है कि इनके पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, घर के और जो भी है, जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वस्तुएँ जो ज़रूरी होती हैं ज़िंदगी में, सारे रिश्ते भी सही हैं, लेकिन फिर भी उनको एक खालीपन सा महसूस होता है, उन्हें लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ है जो मिसिंग है, वो मिसिंग वस्तु क्या है? इन दोनों ही सिचुएशंस में अगर हम देखें तो जो व्यक्ति है वो मूंद चुका है और कहीं ना कहीं हताश है, ऐसे में कैसे मुक्ति को पाया जा सके?
देखिए, जो दिखता है वो है नहीं और जो नहीं है वो दिखता नहीं।
बिल्कुल।
जब उन्होंने कहा कि सेटिस्फैक्शन नहीं है, असल में अभी तक जो उनकी दौड़ थी वो बाहरी वर्ल्ड के साथ थी, उसकी कोई लिमिट नहीं है। देर इज़ एनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड बट नॉट फॉर एवरीबडीज़ ग्रीड। तो उसमें आप नई नई टेक्नोलॉजी जो कि इवॉल्व होती है या नई नई चीज़ें कुछ देर के लिए आपको आश्वासित कर सकती हैं कि आपके पास पावर है चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अगर मन कंट्रोल में नहीं है तो वो बार बार नई चीज़ों को लाता रहेगा और थोड़ी देर के लिए आप उसमें खो जाएंगे, अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन जैसे ही वो सेटिस्फैक्शन थोड़ी सी ऊपर होगी उसके बाद फिर से वो सेटिस्फैक्शन ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। नई चीज़ की शुरुआत, जो इनके आकांक्षाएँ हैं, आकांक्षाएँ जिनसे कि आपका और समाज का भला हो, और भौतिक रूप से नहीं लेकिन आध्यात्मिक रूप से, वो बहुत लंबे अरसे तक चलता। अगर आप दूसरे व्यक्ति की मदद कर पाते हैं और उसकी वजह से उस व्यक्ति की ग्रोथ चलती है तो आपको भी एक खुशी मिलती है, उसको अल्ट्रुइज्म बोलते हैं, यानी दूसरे को दे पाने की शक्ति, जिससे कि आपको अंदर अपने ये महसूस हुआ कि मेरे पास भी कुछ ऐसा है जो मैं दे पाता हूँ, और उसमें भौतिकता का बहुत छोटा सा रोल है। आकांक्षाएं होना बुरा नहीं है, लेकिन उसका आपके जीवन में रोल क्या है और उसके लिए क्या प्राइस आप पे कर रहे हैं वो देखना जरूरी है। अगर किसी चीज का थोड़ा सा मजा लेने के लिए आपका समय, पैसा, सारी रिसोर्सेज, एनर्जीज लग रही हैं, तो फिर आप उसी दौड़ में भाग रहे हैं और उस दौड़ में आप किसी डायरेक्शन में नहीं भाग रहे हैं, आप एक ही जगह पे खड़े होके भाग रहे हैं। तो पहले तो कुछ समय अपने साथ बिताना शुरू करें, आंकलन करना शुरू करें कि ये चाहती क्या है, और अगर उनको ये समझ आए कि वही क्वेश्चंस बार बार अलग रूप में आ रहे हैं, तो शायद समय है कि अब ये उनसे ऊपर उठने के लिए कोशिश करें। और वहां पे अपने जीवन के लक्ष्य को, किस प्रकार से इन्होंने अभी तक जिया है और किस प्रकार से उसे अलग रूप से जीना चाहते हैं, और उसमें अपने अंदर जाना और उसको जानना, उसका एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है।
करेक्ट।
मैं इनसे यही सजेस्ट करूंगा कि ये कुछ समय के लिए अपने आप को भौतिक चीजों से विड्रॉ करें। संन्यास लेने की बात नहीं हो रही है, लेकिन अपने जीवन की प्रायोरिटीज, जिसको पर्पस ऑफ लाइफ कहा जाता है। स्टडीज हुई हैं जहाँ पे कि लोग जो कि डेथ बेड पे थे, उनसे पूछा गया कि आपने अपने जीवन में क्या पाया और क्या चीज आप चाहते हैं कि और कर सकता। एक भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि शायद मेरे पास पैसा और होता तो मुझे अच्छा लगता। हर बार यही बात थी कि कुछ समय मैं फैमिली के साथ बिता पाता, कुछ क्षण अपने साथ बिता पाता, कुछ क्षण अपने को समझने के लिए बिता पाता, कुछ सोसाइटी की और मदद कर पाता, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो जो आकांक्षाएं हैं वो लंबे समय तक आपका साथ भी देंगी, आपको खुशी भी देंगी, और आपके बहाने किसी और का भी फायदा होगा। और उस प्रोसेस के अंदर साइकोलॉजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली आप ज़्यादा भरपूर अपने आप को महसूस कर पाएंगे। जो खालीपन की बात है, अगेन खालीपन इसलिए है क्योंकि आपको कुछ वैल्यू का नहीं मिला। फिजिकल रूप से आपकी 5 senses को मिला, लेकिन अब वो सेटिस्फाइड हो गई हैं और अब वो कुछ और ढूंढ रही हैं, और उस खालीपन को आप बाहरी चीजों से नहीं भर सकेंगे। उसको भरने के लिए, और क्योंकि इनके मन में ये प्रश्न शुरू हो गए हैं, इसका मतलब ये सही समय है इनके लिए अब अपने आप को जानने का। और उसमें ये भी नहीं है कि हमने पूरा जीवन बिता देना, उसको बैलेंस रूप से चलना शुरू करें और अपने ही संदर्भ में, अपने ही परिवार में रहकर किस प्रकार से ये उस खालीपन को या तो बेहतर रिश्तों के साथ, जो कि फॉर्चुनेटली इनके पास हैं, लेकिन उसे एक अच्छा मीनिंग दें, और फिर अपने साथ संबंध के साथ, अपने आप को जानने के बाद, अपने आप को हायर पावर के साथ कनेक्ट करने के बाद अगर उसे महसूस करेंगे, तो मेरे ख्याल से इनका ये जो खालीपन है वो एक सशक्त रूप से सिर्फ अभी के लिए नहीं, हमेशा के लिए भरता जाएगा।
बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बातें आज हमने जानी, जिनमें मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये लगी कि सबसे पहले तो खुद के साथ रिश्ता बनाएं और दूसरा उस सुप्रीम सोल के साथ रिश्ता बनाएं। अगर इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो सही है, इन दोनों के बीच में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं है, अगर जो छोटी मोटी नोकझोंक है वो भी नहीं है, क्योंकि ये ऐसा रिश्ता है जिसमें वन साइडेडली भगवान हमें देता जाएगा और हम उसे थैंक यू बोलते जाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। दोस्तों, आज हमने कई सारी बातें जानी, जिनमें हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये जानी कि किस तरह से ज़िंदगी का जो ये दौड़ है उसमें रुक कर अपने आप के साथ बात करने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद को ही भूल जाते हैं, दूसरे रिश्ते निभाने के चक्कर में खुद से रिश्ता जो है उसे भूल जाते हैं। अगर हम खुद के साथ में एक नया रिश्ता अपनाएं जिसमें हम खुद से बातें भी करें और साथ ही साथ उस परमपिता परमात्मा से भी बातें करें जो हमारे लिए सदा सुखद बातें ही सोचता रहता है, वन साइडेडली वो हमें सब कुछ देता है, अगर बस हमें उन्हें 2 मिनट रुककर बात करने की देर है। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, जिंदगी बने आसान। ओम शांति।